नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। संसद ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 पारित किया। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के साथ ही संसद का मॉनसून सत्र संपन्न। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण कार्य अगले महीने से शुरू होगा। और मॉनसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी, प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बरसात का दौर जारी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। संसद ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। ये विधेयक ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करेगा, साथ ही हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं, विज्ञापनों और उनसे संबंधित वित्तीय लेन देन पर प्रतिबंध लगाएगा। विधेयक में ऑनलाइन मनी गेमिंग से संबंधित कानून का उल्लंघन करने पर 3 साल तक की कैद और 1 करोड़ रूपये तक के जुर्माने या दोनों का प्रावधान किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि ऑनलाइन मनी गेमिंग समाज के लिए एक खतरा बन गया है। हर साल 45 करोड़ लोग ऑनलाइन गेम्स में लगभग 20,000 करोड़ रुपए गंवा देते हैं।
जो एक बहुत बड़ा नशा समाज में फैल रहा था ऑनलाइन मनी गेमिंग का, उससे मुक्ति दिलाई है। और साथ ही साथ ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग जो कि समाज के लिए उपयोगी है, उसको प्रमोट करने के लिए अथॉरिटी बनाने वाला बिल आज पास किया है। लगातार ऑनलाइन मनी गेमिंग के कारण सुसाइड, एडिक्शन और मिडिल क्लास फैमिलीज में एक ट्रेजेडी हो रही थी। जैसे नशा फैलता है, उसी तेजी से ये कुरीति फैल रही थी, तो इसको समाप्त किया गया।
ऑनलाइन गेमिंग विधेयक का प्रदेश में भी स्वागत किया जा रहा है। अभिभावकों में इससे खुशी की लहर है। सवाई माधोपुर की एक गृहिणी आशा शर्मा ने कहा कि सरकार के इस फैसले से समाज में गेमिंग की लत और वित्तीय धोखाधड़ी की घटनाओं पर अंकुश लग सकेगा।
जिस प्रकार की युवा वर्ग और बच्चे पैसे कमाने की लालच में इसका शिकार हो रहे थे, बच्चों में और युवाओं में अवसाद की स्थिति पैदा हो रही थी और वो अपने भविष्य को चौपट कर रहे थे। यहाँ तक कि दुखदायी खबरें भी आ रही थी कि कई बच्चे सुसाइड भी कर चुके हैं। निश्चित ही अभिभावकों को बहुत बड़ी राहत प्रदान हुई है और मैं इसके लिए केंद्र सरकार की बहुत बहुत आभारी हूँ।
लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के साथ ही संसद का मॉनसून सत्र संपन्न हो गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सत्र के दौरान 14 विधेयक पेश किए गए, जिनमें से 12 विधेयक पारित हो गए हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सांसदों द्वारा किए गए व्यवधानों के कारण सदन मुश्किल से 37 घंटे ही काम कर पाया। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने बताया कि सदन केवल 41 घंटे 15 मिनट ही चला और सत्र की उत्पादकता 38.8% रही। स्थगन से पहले राज्यसभा ने आज 3 विधेयक संसद की संयुक्त समिति को भेज दिए हैं। इनमें 130वां संविधान संशोधन विधेयक, केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार संशोधन विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक शामिल हैं। प्रदेश में शिक्षा के समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार की ओर से 3,200 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। केंद्र से मिली इस राशि से कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में विभिन्न काम करवाए जाएंगे। इसके अलावा स्कूलों में निर्माण और मरम्मत के काम भी होंगे, साथ ही स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा, डिजिटल लैब और नवाचारों को बढ़ावा दिया जाएगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात कर ये राशि जारी करने का अनुरोध किया था। श्री शर्मा ने समग्र शिक्षा के तहत राज्य में शिक्षा विभाग की प्रगति, नीति और भविष्य में किए जाने वाले कार्य के संबंध में भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री को जानकारी दी थी। राज्य के युवाओं को विदेशों में नौकरी दिलाने के उद्देश्य से लैंग्वेज लैब बनाई जाएगी। मानव संसाधन मंत्रालय और इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी की ओर से ये लैब संचालित की जाएगी। इनमें अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, जापानी जैसी भाषाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। लैंग्वेज लैब के माध्यम से विदेशी भाषाओं के प्रशिक्षण से युवाओं के कौशल में बढ़ोतरी होगी। ये पहल युवाओं को पर्यटन, व्यापार, आईटी, शिक्षा और सेवा क्षेत्र में रोजगार दिलाने में कारगर साबित होगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण कार्य अगले महीने से शुरू होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस संबंध में आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक ली। इसमें केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में श्री नायडू ने लोकसभा अध्यक्ष को एयरपोर्ट परियोजना से जुड़ी प्रगति की जानकारी दी। परियोजना को करीब 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2027 में इस हवाई अड्डे से पहली वाणिज्यिक उड़ान शुरू होने की संभावना है। श्री बिरला ने कहा कि ये एयरपोर्ट हाड़ौती अंचल के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा, साथ ही नए रोजगार के अवसर पैदा करेगा। एयरपोर्ट के डिजाइन में राजस्थान की पारंपरिक वास्तुकला और सांस्कृतिक धरोहर को विशेष स्थान दिया जाएगा। इसके अलावा बैठक में मौजूदा कोटा एयरपोर्ट परिसर में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से विशेष ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू करने का फैसला किया गया। राज्य में शहरी और औद्योगिक गैस वितरण तंत्र CGD को विस्तृत करने के लिए जल्द ही केंद्रीकृत वेब पोर्टल की सुविधा शुरू की जाएगी। खान और पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत ने बताया कि इस पोर्टल पर राज्य में चल रही 13 CGD संस्थाएं आवश्यक अनुमतियों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी। इसके साथ ही संबंधित संस्थाओं द्वारा अनुमति भी ऑनलाइन जारी की जाएगी। ऑनलाइन व्यवस्था से मुख्य सचिव और प्रमुख शासन सचिव स्तर पर मॉनिटरिंग की जा सकेगी, साथ ही आवश्यक निर्देश जारी किए जा सकेंगे। इससे आधारभूत संरचना विकसित करने में देरी नहीं होगी, इसके साथ ही काम में पारदर्शिता आएगी। गौरतलब है कि पिछले दिनों राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 जारी की गई थी। और अब मौसम। प्रदेश में मॉनसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी है। लंबे अंतराल के बाद आज राज्य के विभिन्न स्थानों पर बारिश का सिलसिला जारी है। राजधानी जयपुर में रुक रुक कर बरसात हुई। जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों में दोपहर में झमाझम बादल बरसे। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा और स्वरूपगंज सहित कई इलाकों में बारिश हुई। सवाईमाधोपुर में हुई अच्छी बरसात से मौसम सुहावना हो गया। लोगों को तेज गर्मी और उमस से राहत मिली है। तेज बरसात से रणथंभौर और दुर्ग और त्रिनेत्र गणेश मार्ग पर पानी भरने से रास्ता बंद हो गया। वहीं पाली में तेज बारिश से कई जगह पानी भर गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
पाली जिला मुख्यालय मारवाड़ जंक्शन दिशुरी नारलई बाली से संपूर्ण जिले में आज बारिश का दौर जारी है। वहीं नाडोल के राजकीय बालिका छात्रावास में पानी भरने से छात्रावास के बच्चों को ट्रैक्टर के माध्यम से रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। जिले के सोजत में आज अत्यधिक बारिश का दौर जारी है। बारिश से सड़कों पर पानी फैल गया, यातायात आवागमन बाधित हो रहा है। वाहन चालकों को दिन में हेडलाइट का सहारा लेना पड़ रहा है। मौसम सुहावना बना हुआ है, आमजन को तेज उमस से राहत मिली है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े 61.25 फीट बराव क्षमता वाले जवई बांध में अभी तक 44.25 फीट पानी की आवक हुई है। साथ ही पानी की आवक लगातार जारी है, जिससे किसानों और आमजन में खुशी की लहर है। विशारद जोशी, आकाशवाणी समाचार, पाली।
बारा में जिला मुख्यालय सहित शाहबाद क्षेत्र में मूसलाधार बरसात हुई। इसने नेशनल हाईवे 27 पर यातायात प्रभावित रहा।
बारह जिला मुख्यालय समेत जिले के साबा क्षेत्र में गुरुवार को सुबह से ही जोरदार बारिश से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित रहा। लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर रहे, वहीं नेशनल हाईवे 27 पर बारिश का पानी आ जाने से लंबा जाम लग गया, जिसके चलते हाईवे पर दोनों ओर लंबी लंबी कतारें लग गई। वहीं जाम में दो एम्बुलेंस भी फंस गई। वहीं भवनगढ़ क्षेत्र में बारिश से नाले में आए उफान में चालक सहित कार नाले में बह गई। भवनगढ़ थाना पुलिस व ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद कार चालक को बाहर निकाला। हालांकि बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए हैं और आमजन को भीषण गर्मी व उमस से राहत मिली है। लक्ष्मीचंद नागर, आकाशवाणी समाचार बारा।
मौसम विभाग ने आज 28 जिलों के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, जयपुर, टोंक, अलवर और सीकर जिले में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इन स्थानों पर तेज बरसात हो सकती है। एक दो दौर भारी बरसात के भी होने का पूर्वानुमान है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने आज चित्तौड़गढ़ में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और गिव अप अभियान की प्रगति की समीक्षा बैठक की। बैठक में श्री गोदारा ने जरूरतमंद परिवारों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए गिव अप अभियान को महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने चित्तौड़गढ़ की सराहना करते हुए कहा कि जिले में अब तक 54,000 से अधिक पात्र लोगों ने स्वेच्छा से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटाकर मिसाल पेश की है। श्री गोदारा ने अधिकारियों को नए लाभार्थियों को समय पर राशन कार्ड जारी करने के निर्देश दिए, जिससे बिना किसी रुकावट के योजनाओं का लाभ मिल सके। कृषि विभाग की ओर से प्रदेश में खाद की दैनिक उपलब्धता पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। इसके लिए विभाग कम उपलब्धता वाले और अधिक खपत वाले जिलों और ब्लॉक्स की पहचान कर वहां प्राथमिकता से डीएपी और यूरिया का वितरण कर रहा है। विभाग के शासन सचिव राजन विशाल ने बताया कि खरीफ 2025 सीजन में अप्रैल से अब तक 8,05,000 मैट्रिक टन यूरिया की आपूर्ति की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से राज्य को ये उर्वरक आवंटित किए गए थे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे पर स्थित टोल प्लाजा पर दोपहिया वाहनों से कोई उपयोगकर्ता शुल्क नहीं दिया जाता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में टोल प्लाजा पर दोपहिया वाहनों से टोल वसूली के संबंध में सोशल मीडिया पर प्रसारित फर्जी खबरों पर यह स्पष्टीकरण दिया है। मंत्रालय के अनुसार नेशनल हाईवेज पर दोपहिया वाहनों से टोल शुल्क वसूलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 पारित किया। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के साथ ही संसद का मॉनसून सत्र संपन्न। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण कार्य अगले महीने से शुरू होगा। और मॉनसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी, प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बरसात का दौर जारी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।